इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में क्या फरमाया है जो लोग इल्म को छुपाते हैं जब उनके पास आ जाता है, ठीक है। उनकी बार हमने बात पढ़ी, ये बहुत ही अहम मजमून है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी बड़ी सजा बताई गई कि जो लोग इस चीज को फिर कंटिन्यू करते हैं उनके ऊपर कितनी लानतें हैं, एक्सेप्ट इसके कि वो तौबा कर लें। पिछले लोगों के लिए तो ये बात थी, हमारे लिए भी ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि इल्म का छुपा लेना इतना सख्त बड़ा गुनाह है। यानी जिन गुनाहों पर लानत की जाती है वो बड़े गुनाह होते हैं, कबीरा गुनाह होते हैं। तो ये मामूली बात नहीं होती कि इंसान इल्म को छुपा ले, ठीक है। अब इल्म को छुपा लेने में, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था, जो भी इल्म आप हासिल कर रहे हैं उसको आगे पहुंचाएं, उसको बताएं। अब हम इसके अंदर बार दफा तो शर्माते हैं, बुखल करते हैं, बार दफा में ये होता है कि हमें इतना अच्छी तरह नहीं पता। जिस चीज का नहीं ज्यादा अच्छी तरह पता वो ना बताएं, मगर जिस चीज का पता है उतने को तो आगे पहुंचाएं। कुछ तो पता होगा, ऐसे तो नहीं कि एक बार आपने पढ़ लिया आपको कुछ भी नहीं मालूम। तो अब हम किसको बताएं, क्या करें, बाहर खड़े हो जाएं, गली में खड़े हो जाएं, सड़क पे चले जाएं, मॉल में खड़े हो जाएं, बताना शुरू कर दें लोगों को, क्या करें? लेकिन जहां तक भी आपकी रीच है, जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक पहुंचाइए। बाज लोगों की पहुंच सिर्फ अपने घर तक होती है, उनकी दुनिया सिर्फ उनका घर है। तो जो आपकी दुनिया है ना उस तक पहुंचाएं, ठीक है। आप पूरे ग्लोब पे तो नहीं जा सकते, हालांकि आजकल इंटरनेट ने इतना चीजों को आसान कर दिया। कुछ लोग सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं या फोन पे ही वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके थ्रू आप पूरी दुनिया तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अब दायराकार हर एक का डिफरेंट है। कुछ ऐसी खवातीन होती हैं वो ये भी नहीं करती, तो जहां तक भी पहुंच है, जहां तक आपकी दुनिया, बस उनकी दुनिया अगर घर और बच्चे हैं तो वहां तक पहुंचा दे। फिर हर एक के कोई ना कोई रिश्तेदार है, कोई मेका है, कोई ससुराल है, कोई आगे और एक्सटेंडेड फैमिली है, वहां तक पहुंचाइए। फिर हर एक के कोई ना कोई मिलने जुलने वाले जरूर होते हैं, कोई फ्रेंड्स का सर्कल जरूर होता है, कोई लोग जरूर होंगे जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। ऐसे तो आइसोलेटेड तो कोई भी जिंदगी नहीं गुजारता ना। क्या वहां तक पहुंचाया आपने जो आपने सीखा? क्या सोचा इसको कि जो मैं सीख रही हूं मेरी अब जिम्मेदारी है कि मैं आगे तक पहुंचाऊं? कैसे पहुंचाएं इसके लिए भी सोचें कि हर एक को पहुंचाना एक तरीके से हो सकता है, ना हो सके पॉसिबल। किसी को फोन करके पहुंचाया जा सकता है, किसी की मजलिस में बैठ के पहुंचाया जा सकता है, किसी के ईमेल के थ्रू पहुंचाया जा सकता है, किसी को टेक्स्ट किया जा सकता है। क्या तरीका आप अपनाएंगे अपने लिए, ये आपको सोचना है। हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं, हर एक के इर्द गिर्द वाले लोग भी मुख्तलिफ होते हैं। किसी का अकीदा बिगड़ा हुआ होगा, किसी का अमल बिगड़ा हुआ होगा, किसी को वैसे ही गफलत तारी होगी। मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं कि उनके इर्द गिर्द वाले इस्लाम को नहीं जानते, उन तक कौन पहुंचाएगा? बाज लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, जहां पे हम रहते हैं वो लोग मुंह से कहते हैं कि वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। आज ये भी एक टर्म निकल आई है कि ठीक है हम मुसलमान तो होंगे लेकिन हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। कौन सी टर्म होती है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है? मुसलमान या तो मुसलमान है या नहीं है। व्हाट इज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, है या नहीं? यानी वो बताना चाहते हैं वैसे हम अमल वमल कुछ नहीं करते, नहीं बर्मला बोलते हैं। इनको कौन बताएगा? बाज लोग ऐसे भी हैं, वो ऐसे मुल्कों से आए हुए हैं जिन मुल्कों में वो मुसलमान तो थे लेकिन लुट के यहाँ पे जब पहुंच गए तो उनको सिर्फ इतना याद है कि हाँ हम मुसलमान होते थे, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं मालूम। उनको कौन पहुंचाएगा, कौन बताएगा उनको? बस दफा आप ऐसी जगह पे मूव होते हैं जहां पर आप अपने इर्द गिर्द वालों में जब जान पहचान करते हैं आपको पता चलता है कितनी गफलत आ रही है। दुनिया और उसकी मोहब्बत बस दिलों में गड़ी हुई है, कौन उनको बताएगा? क्या मैं और आप मुजरिम नहीं है अगर हम नहीं बताते? देखें आप उस बंदे को क्या कहेंगी ये बताइए, उसको क्या कहेंगी कि जिसके पास کسی بڑی سخت بیماری کی دوا موجود ہے لیکن وہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, دیتا نہیں ہے, کسی کو نہیں دیتا, شیئر نہیں کرتا. حالانکہ وہ اگر شیئر کرے تو اس کی دوا ختم نہیں ہو جائے گی, اور بڑھتی رہے گی. کیا کہیں گے آپ ایسے انسان کو؟ ظالم, سخت دل, سنگ دل, کتنی ساری باتیں کہیں گے نا. ہمارے ارد گرد بھی انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے, یہ موت سے بھی بدتر جگہ ہے, اور دوا ہمارے پاس ہے لیکن ہم شیئر نہیں کرنا چاہتے, ہم دینا نہیں چاہتے کسی کو, حالانکہ دوا کم نہیں ہو جائے گی. تو آگے پہنچائیں, یہ فریضہ سمجھیں اپنا. برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ دنیا کی بہترین کتاب قرآن ہے لیکن بدترین لوگ ہیں جو اس کو فالو کرنے والے ہیں. یعنی یہ نہ ہو کہ ہمارا بھی وہی حال ہو جائے کہ ہم حامل قرآن تو بن جائیں لیکن عامل قرآن نہ بنیں. یہ جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے, بتا رہا ہے, ویسے چلے ہی نہیں, بس لے رہے ہیں. یہود کے بارے میں بھی آتا ہے نا, آگے آپ زندگی رکھے تو پڑھیں گے کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یہ یہود کی مثال ان لوگوں کی طرح جیسے گدے ہوتے ہیں اور گدوں کے اوپر کتابیں لادی نہیں ہیں تو وہ بس بوجھ اٹھائے ہوئے اور ان کو کچھ نہیں پتا کہ اس میں کیا علم ہے. یہ نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ ہم بھی قرآن کا بس ایک کتابوں کا بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے, یاد کر رہے ہیں, رٹ رہے ہیں, ترجمے دیکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اس کے بعد آگے کیا, کچھ بھی نہیں. تو جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, تو ہم پڑھتے پڑھتے آگے نکلتے جائیں گے, ہر ہفتے ایک نیا مضمون آ جائے گا, پچھلے کا کیا بنے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اتنی کوشش کم از کم کریں کہ قرآن پاک آرڈر کریں. الحمدللہ ہم نے ویب سائٹ پہ بھی لگا دیا, وہ لنکس دے دیے ہیں جہاں سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. آپ اگر ہمیں کہیں گے تو ہم آرڈر کر دیں گے, وہاں ہم سے کوئی لے سکتا ہے. تو یہ کام لیکن پہنچانے کا ہر ایک تک ہمارے بس میں نہیں ہے, پر آپ جہاں جہاں رہتے ہیں اپنے ارد گرد والوں میں تو کام شروع کریں نا, پہنچائیں تو صحیح. کوئی مانے یا نہ مانے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا کہ ہم ان میں نہ شامل ہوں جن کے بارے میں آیا کہ وہ چھپاتے تھے, جو اللہ نے انسانیت کی بہبود کے لیے, انسانیت کی فلاح کے لیے اتارے تھا, وہ ہدایت کا پیغام چھپا لیا تھا انہوں نے. یہ نہ آئے ہمارے پر. ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں کبھی کسی کو ایک لفظ بھی نہ بتاتا. یہ آیت بتاتی ہے کہ نہیں, جو ہے آگے دو, پہنچاؤ, اور اگر وہ نہ دیتے تو آج حدیث سب سے زیادہ تو حدیثیں آئیں ان کی طرف سے. پھر ہمیں پتا چلا صبر کا مقام, کہ صبر کا مقام کتنا بڑا ہے. یہ بھول نہیں جانی کہ اگلا سبق آ گیا, نیا آ گیا, وہ پچھلا چلا گیا. نہیں, پچھلے کو لے کے ساتھ چلنا. آج کی آیات بھی بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں, تو دیکھتے ہیں ہم آج کی آیات کو. اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمارے دلوں میں اتار دینا, ہمارے سینوں کو کھول دینا آیات کے لیے, اللہ اپنے پیغام کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, آگے ایک سوال ہے پہلے, اور وہ سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے, کون ہے جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے. وہ چیز بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہستی ہو سکتی ہے. اب یہ آپ اپنا اپنا جواب, اب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اب جواب میں نے اللہ رسول لکھنا ہے آگے, اور جب کہیں اور ہوں تو پھر کچھ اور لکھنا ہے. باقی ہر ایک کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا اپنا ہر کوئی لکھے اپنے پاس کے مجھے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے. اچھا, اب یہاں پہ آیت کو دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں, بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا, یعنی اللہ کو چھوڑ کے, اندادن, انداد ند کی جمع ہے جسے میں نے آپ کو بتایا. اور ند کس کو کہتے ہیں؟ ند اس کو کہتے ہیں جو پارٹنر ہوتا ہے, جو ایکول ہوتا ہے, جو किसी चीज में भी ना बराबरी का शरीक हो। मसलन है एक कंपनी में पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स की बिजनेस है, अब वो 50-50 के शरीक है तो इसको कहेंगे निध, दोनों इक्वल शरीक हो, ये नहीं कि एक 10% का एक 90% का, ये निध वही होगा जो कि बराबरी के शरीक हो हर चीज में यानी। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो उनको किसी और को अल्लाह को छोड़ के यानी अल्लाह के सिवा किसी और को पार्टनर बना देते हैं अल्लाह का। कैसे कैसे बनाते हैं पार्टनर? युहिब्बूना हुम, वो मोहब्बत करते हैं उनसे, का हुब्बिल्लाह, जैसे मोहब्बत करनी होती है अल्लाह से, जैसे मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, यानी जो मोहब्बत अल्लाह के लिए इंसान के दिल में होनी चाहिए वो ऐसी मोहब्बत किसी और को दे देते हैं। इस वजह से कहा गया कि उनको निद बना लिया, यानी मोहब्बत में शराकत दे दी। शरीक होता ना, निद का मतलब पार्टनरशिप, शरीक, वो मोहब्बत में किसी और को पार्टनर बना लेते हैं अल्लाह का। देखिए, एक शिर्क होता है शिर्क फि जात, जात में किसी को शरीक बना देना, मतलब कि जैसे आप ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम को नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का बेटा। एक सिफात में शिर्क होता है अल्लाह की सिफात किसी और में भी मानना। एक हुब में भी शिर्क होता कि हुब मोहब्बत जैसी अल्लाह के लिए होनी चाहिए वैसी किसी और को दे देना, यानी अल्लाह का मद्दे मुकाबिल किसी को ठहरा देना, अल्लाह के बराबर ठहरा देना। ठीक है, अब ये एक माना हो गया। दूसरा माना क्या है कि जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए वैसी वो किसी और से करने लगते हैं। एक मैंने आपको क्या बताया, बराबर बराबर कर देते हैं, यानी उसको उतनी मोहब्बत देते हैं किसी और को जितनी अल्लाह के लिए मोहब्बत है। एक है जैसी अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी चाहिए वैसी किसी और को दे देते हैं, यानी एक के अंदर तो यह कि अल्लाह से भी मोहब्बत की लेकिन किसी और से इक्वल मोहब्बत कर ली, वो भी मुराद है। या दूसरी क्या चीज हो सकती है कि अल्लाह से ज्यादा किसी और को चाहना। ठीक है, और यहां पे क्या आया, युहिब्बूना हुम, इसका मतलब है कि ये सिर्फ बुतों की बात नहीं हो रही कि हम कहें वो बुतों को ऐसे करते थे, ठीक है वो भी हो सकते हैं, मगर हुम जमा है, इससे पता चला कि वो सब चीजें इनमें आ जाती हैं जिनसे इंसान शदीद मोहब्बत करने लगता है। अब वो चीजें क्या हो सकती हैं, पहले हम ये देखते हैं। कभी कभार वो चीजें इंसान की जिंदगी में, कोई इंसान हो सकते हैं, कोई रिश्ते हो सकते हैं, कोई उसके ऐसे प्यारे हो सकते हैं, कभी माल हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल इसलिए देख रहे हो कि इसके अंदर ये ना समझेगा कि ये कोई बुतों की बस बात हो रही है या कोई लिमिटेड सोच के साथ आप किसी एक चीज को सोचें। तो कभी माल हो सकता है, कभी इसी तरह कोई इसका बिजनेस वगैरह हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है। आप देखते हैं जो लोग बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं उनका क्या, उनकी जिंदगी क्या होती है, उनका उठना बैठना सोना जागना, उनके दिमाग पे हर वक्त वही एक चीज सवार रहती है, उसे निकल ही नहीं पाते। खाना भी खा रहे हैं तो साथ साथ उसी की बातें, किसी मजलिस में भी बैठते हैं ना तो उन्हीं के साथ बैठते हैं जहां से उनको मजीद बिजनेस मिलने का चांस होता है, कॉन्टेक्ट उन्हीं के साथ बनाते हैं, उनके रिश्ते नाते भी वहीं पे होते हैं जहां पे बिजनेस होता है, तो सारा दिमाग उसी में लगा होता है। इसी तरह बास लोग, देखिए एक आपको बात बताऊं, पहले जमाने में ना बुत होते थे, वो लकड़ी के बुत या पत्थरों के बुत या चीजों के बुत लोग बनाते थे, वो जाहिर के बुत होते थे, वो बाहर नजर आते थे। आज के बुत जो है ना वो बाहर ऐसे नहीं है कि जिनके आगे कोई लोग सज्दा करें, आज के बुत है ना इंसानों के दिलों के अंदर, दिल के अंदर बुत पड़े हुए। और मसला यही है कि वो दिलों के अंदर जो बुत है ना वो नजर नहीं आते, तो जब नजर ही नहीं आते तो इंसान खुद भी उनसे गाफिल रहता, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने अपने अंदर इतने बुत खड़े किए हैं। कोई और तो देख के उसको बता नहीं सकता ना, वो खुद अपना जायजा ले सकता है। जैसे आजकल बुद्ध कह ले उसको, ये भी बुद्ध है, कि लोग बाज ऐसे किसी चीज के शौकीन होते हैं, इतनी उनको उससे मोहब्बत होती है, किसी कोई फिल्म स्टार है या कोई सिंगर है या कोई प्लेयर है या कोई ऐसा म्यूजिशियन है, गाने वाला कोई है, बस वो इतने उनके दिमाग पे छाए होते हैं, इतने ज्यादा वो उनसे ऑब्सेस्ड होते हैं, इतनी उनको उनसे मोहब्बत होती है कि वो बस सारा वक्त तो उन्हीं की बातें करते हैं। वो जी वो कहाँ चला गया, वो कहाँ से आ गया, उनको फॉलो करेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो क्या पहन रहा है, क्या खाता है, किधर जाता है, उसकी जिंदगी कैसी है, बस वो उनको ना, जिसको हम कहते हैं ना ऑब्सेशन हो जाना, वही तो होब है। वो अगर कहीं नजर आ जाए तो फिर लोगों को इतना बताते हैं, पता है मैंने फलाने को देखा था, देखो मैंने उसके साथ फोटोग्राफ लिया है, मैंने उसका ऑटोग्राफ लिया है, यानी उनकी जिंदगी क्या, वो लोग उनको इतने महबूब होते हैं कि वो सोते जाते बस उन्हीं के ख्वाबों में रहते हैं, उनके लिए बस कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, उनका बस बिगेस्ट ड्रीम ये होता है कि बस किसी तरह उनसे मुलाकात हो जाए। अच्छा, इसी तरह कुछ लोगों को कोई रिश्ते ऐसे प्यारे होते हैं कि बस वो उनके पीछे ऐसे पागल होते हैं कि वो बस कुछ भी कह दे, वो कहते सूरज मशरक से नहीं निकलता, मगरब से निकलता, तो वो ही बोलने शुरू जाएंगे, इतने वो उनके पीछे पागल होते हैं। उलमा कहते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, इसका पता कैसे चलता है, कि उसकी जुबान पे हर वक्त उसका जिक्र है, उसके बारे में हर वक्त वो सोचता रहे, और जिसके साथ उसको दिल करे कि मैं उसके साथ टाइम गुजारूं, समझ लें बस उसको उससे शदीद मोहब्बत है। तो जो सोचों में है, ख्यालों में है, जुबान पे है, जो हर वक्त जिसके साथ रहने का ख्याल रहता है, वही तो फिर है जो उसका महबूब है, जिससे मोहब्बत होती है, उसको क्या कहते हैं, महबूब कहते हैं ना उसको, आज आइडल्स भी कह रहे हैं, आज उसको अपना हीरो भी कहते हैं, आज उसको अपना इस तरह के नाम दिए हैं ना, और उनके पीछे वो फिर सब कुछ करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग, ऐसी हस्तियां, ऐसी चीजें, या कुछ लोगों के लिए कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो उनको इतने प्यारे हैं, मसलन उनके घर हैं, या किसी की गाड़ी हो सकती है, किसी की कोई जो उनको इतना प्यारा होता है कि बस उसका ख्याल रहता है, इसको कहते हैं महबूब। ये किसका महबूब कौन है, आपने मोहब्बत को समझना है ना, तो आप देखते हैं जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो कैसे, क्योंकि पहले आप अगर मोहब्बत को ही ना समझे कि मोहब्बत है क्या चीज, तो उसके बाद जितनी मर्जी बातें होती रहे समझ ही नहीं आनी कि क्या बात क्या हो रही है। जब महबूब की बात आती है तो जहन में क्या आता है, अगर आप मजनू की बात करें तो मजनू कैसा था, मोहब्बतों में जो बड़े मशहूर हैं उनकी बात ही करके देख लेते हैं कि पहचाने कि मोहब्बत क्या चीज होती है। जो मजनू था उसको किस तरह से लैला से मोहब्बत थी, कि कहा जाता है कि एक जगह लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो मजनू लैला लैला पुकारते हुए वहां पे आ गया, और उसको कोई होश नहीं आया। जब उन्होंने नमाज खत्म की, उन्होंने कहा तुमने क्या हमारी नमाज खराब करके रख दी है, तुम अपने शुरू हुए हुए और लैला लैला पुकारते जा रहे हो, पता नहीं हम नमाज पढ़ रहे हैं। वो कहता कि बड़ी प्यारी बात है कि मैं तो लैला की सोचों में इतना गुम था कि मुझे तो होश ही नहीं कि मैं कहाँ हूं और मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और तुम कैसे खुदा की सोचों में थे कि तुम्हें मेरी सारी बातें सुन रही थी। यानी उसने कहा कि मैं किसी की मोहब्बत में इतना पागल हो गया हूं किसी इंसान की, कि मुझे नहीं होश कि मेरे इर्द गिर्द क्या है, और तुम खुदा की मोहब्बत का दावा करते हो, और देखो तुम उसकी मोहब्बत में, तुम्हें तो सब इर्द गिर्द की सब बातें पता चल रही है क्या हो रहा है, हमारी नमाज खराब हो गई। तो अब हमने ये देखना है कि हमारी जिंदगी के अंदर मोहब्बत के जो टॉप लेवल है, क्योंकि मोहब्बत के भी दर्जे होते हैं, कोई ये कह सकता है मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन मैंने आपको कहा ना यहाँ पे ये भी मीनिंग है कि जो अल्लाह ताला की मोहब्बत है उसके बराबर किसी को लाके बिठा देना, वो भी निद है, ऊपर करना तो जाहिर है वो तो है ही है ना, लेकिन उसके इक्वल भी नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता। इक्वल भी कर दिया तो तब भी शरीक ठहरा दिया अल्लाह के साथ, ठीक है। अब मोहब्बत के दर्जे हैं, कौन किस दर्जे पे हमारे दिल में, ये हमें आज सोचना है, टॉप पे कौन है। एक बात शायद कड़वी लगे लेकिन ऑनेस्टली हमारे यहां जो एक खुदा की जात का कॉन्सेप्ट है ना, वो पता है क्या है कि परेशानी के वक्त बस जिसे दुआएं कर ली, मुश्किल दूर करानी है तो वजीफे कर लिए, कोई सी प्रॉब्लम में हम फंस गए हैं तो फिर उससे निकलने के लिए बस सजदे दे दिए, कोई ख्वाहिश पूरी करानी है तो उसे दुआएं करनी, कोई जरूरत कोई चीज चाहिए, कोई मुझे कुछ मांगना है, कोई मुझे बस बड़ा कोई चीज पसंद है, मुझे भी मुझे चाहिए तो उसके लिए मैंने उसको रुजू कर लिया उसकी तरफ, बस इतना, बाकी और कुछ नहीं। मोहब्बत का तो आम लोग सोचते भी नहीं है, मोहब्बत मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत वो क्या चीज होती है। अल्लाह तो इसलिए है कि जैसे हमें कोई चीज चाहिए तो फिर हम उससे रुजू करते हैं, हम जैसे कुछ हमें चाहिए होता है तो फिर हम ऑनलाइन चले जाते हैं, कभी किसी वेबसाइट पे, कभी किसी पे, वहां से चीजें ऑर्डर कर देते हैं, तो बस फिर हम जब हमें कोई चीज चाहिए तो हम अल्लाह से दुआ कर लेते हैं, बस उसके लिए अल्लाह है, उससे आगे तो कुछ नहीं हमें पता। अक्सर ज्यादा हमें लोगों को अल्लाह ताला का यही कॉन्सेप्ट है, और यहां पे कहा गया है कि जितना कोई किसी को चाह सकता है ना, जितनी कोई किसी से मोहब्बत कर सकता है, जो उसकी मैक्सिमम है वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। इसके अंदर तो बहुत सारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत है क्या चीज। अच्छा मैं उसको इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि मोहब्बत है क्या चीज, शायद हमें ये भी नहीं पता कि मोहब्बत क्या चीज होती है। कहा जाता है मोहब्बत के माने बहुत से हैं, अव्वल तो इसका जो मीनिंग है ना कोई बता इसलिए नहीं सकता कि वो कहते हैं ये मोहब्बत वो जज्बा है, जो जज्बात को जो आप ना वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते, इल्मी बातों को वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं लेकिन जज्बात को कैसे करें। कहते हैं मोहब्बत का मादा जो है, इसका रूट क्या है, हुब। हुब इसका एक माना क्या है, वो मटके को कहते हैं जो पानी से भरा हुआ हो, अगर उस मटके में मजीद पानी डालने की कोशिश की जाए तो उसमें भरा हुआ पानी और पानी को आने नहीं देगा, ठीक है, उसको गिरा देगा उसमें, क्योंकि जगह ही नहीं है। मटके की इस कैफियत को हुब कहते हैं। कुछ समझ आई बात के नहीं, बहुत गहरी बात है, इसी से आप समझ लेंगे मोहब्बत क्या होती है। यानी दिल का बर्तन किसी की मोहब्बत से इतना भरा हो कि किसी और की मोहब्बत या याद की गुंजाइश ही ना रहे। सुभान अल्लाह, किसी चीज की जरूरत ही ना रहे, बस हर वक्त अपने महबूब के ही उसके कुर्ब, उससे मुलाकात की तड़प ही बेचैन करती रहे, क्योंकि दिल उससे भरा हुआ है। अच्छा ये एक माना, एक और माना इसका है जिसको डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह डिफाइन किया हुआ ना, मोहब्बत नाम है किसी की तरफ झुकाव, मिलान, उसको मिलने की तड़प, दिल के अंदर जो जोश की कैफियत है उससे मुलाकात का या उसके कुर्ब का, उसको मोहब्बत कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर महबूब को देखने, उससे मिलने और उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए दिल में शौक ही नहीं है ना, और दिल में जोश ही नहीं है, तो आप कुछ भी कह लें मोहब्बत नहीं कह सकते उसको, ठीक है। जस्ट एक पहचान की बात बता रही है, मोहब्बत नहीं उसको कह सकते, आप उसको कुछ और नाम दे लेंगे। इसका मतलब है कि अल्लाह से शदीद मोहब्बत जो है वो, अगर किसी को अल्लाह से मिलने का शौक नहीं है, वो जोश ही नहीं है, तो वो मोहब्बत ही नहीं है। और बाज ने कहा है कि मोहब्बत जो है ना, इसका जो हुब का माना होता है, सख्त बारिश के बाद जो बुलबुले उठते हैं उनको हबाबुल मा कहते हैं। इसी वजह से महबूब की मुलाकात का जो जोश में तड़पना है ना, उसके लिए, उसकी मुलाकात के लिए, उसका नाम मोहब्बत है। फिर इसी तरह एक और इसका मीनिंग ये कहा गया कि हुब से मतलब है वो चार लकड़ियां जिनके ऊपर बर्तन रखा जाता है। आप देखते हैं ना, नीचे लकड़ियां रखी होती हैं और ऊपर बर्तन रखा होता है, और वो अब बर्तन का बोझ वो लकड़ियां बर्दाश्त कर रही हैं। तो वो उन्होंने कहा कि यानी वो जो चार चार वाला एक स्क्वायर बनाया जिसपे पानी का बर्तन रखा गया, उसको हुब कहते हैं। तो कहते हैं मोहब्बत हुब इसलिए इसको कहते हैं कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से आता है, यानी इज्जत आती है या तकलीफ आती है या मुसीबत आती है, उसको वो बर्दाश्त करता है। उसके ऊपर, मुहिब के ऊपर वो मुश्किल नहीं गुजरती, क्योंकि वो खुशी से इसलिए बर्दाश्त कर रहा होता है कि मेरे महबूब ने मुझे दी है, मैं महबूब की तरफ से। वो कहते हैं ना, मजनून जो था, मजनू एक कुत्ते के पैर चूम रहा था, तो लोगों ने कहा दीवाने क्या कर रहा है। कहता है ये कुत्ता जो है ना, है तो कुत्ता ये, लेकिन लैला की गली से गुजरता है, इसलिए मैं इसके पैर चूमता हूं। तो मोहब्बत ये करा देती है। अल्लाह अकबर। तो जब मोहब्बत होती तो फिर उसको, उस इंसान को ये नहीं होता कि कोई मुझे तकलीफ पहुंच रही, उसको होता है कि जो मिजाज यार में आए, कि जो मेरी अल्लाह की मर्जी जिसमें भी मुझे रखा। फिर जुनेद बगदादी वो मोहब्बत के बारे में कहते हैं कि आंखों से आंसुओं की बारिश और शौक और दीवानगी में दिल का धड़कना, ये मोहब्बत कहलाता है। फिर एक और इसकी डेफिनेशन है कि मोहब्बत दरअसल मोहब्बत करने वाले के दिल का महबूब के साथ इस हद तक मशगूल हो जाना कि महबूब के सिवा दूसरी तरफ तवज्जो करना उसको याद ही ना रहे, हमेशा तवज्जो उसी तरफ रहे। ये भी एक मोहब्बत है, मोहब्बत की डेफिनेशन है। फिर एक और ये भी इसकी निशानी है, ये भी मोहब्बत कहलाती है कि चाहे महबूब से कुछ भी ना मिले फिर भी उसकी तरफ से ध्यान ना हटे। लोग इंसानों से मोहब्बत करते हैं तो देखिए वो कहते हैं ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कुछ होता है, अब कुछ महसूस नहीं होता है। जिधर भी जो भी काम कर रहे होते हैं कहते हैं उसकी याद आती है, बस उसकी याद में कि किस वक्त ये काम खत्म हो तो मैं भागूं उसकी तरफ, उसको बात करूं, उससे कॉल करूं, उससे राबता करूं, उसकी आवाज सुन लूं, उसके शौक में रहते हैं। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो वो, उसका कैसा शौक होना चाहिए था, उसका कैसा दिल होना चाहिए फिर अल्लाह के लिए। फिर इसी तरह वो ये भी कहा गया कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसको तन्हाई अच्छी लगने लगती है, जो तन्हाई में अल्लाह से बातें करे। फिर इसी तरह ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम देखना चाहते हो ना तुम्हारे दिल में अल्लाह की कितनी वुकत है, तो तुम ये देख लो कि अल्लाह के हाँ तुम्हारी कितनी वुकत है, तुम ये देख लो तुम्हारे दिल में अल्लाह की कितनी कदरों कीमत है। जितनी आप मोहब्बत अल्लाह से करते होंगे, जितनी उसकी वुकत आपके दिल में होगी, उतना ही अल्लाह के हाँ आपका मकाम है। ठीक है ना, ये अल्लाह ताला ने ना एक इंसान को जब बनाया ना, तो उसके अंदर एक जज्बा रखा है किसी को बहुत शदीद चाहने का, ये अल्लाह ने रखा है उसके अंदर, कि वो इंसान के अंदर समझ लें एक भूख रखी है कि वो किसी से बहुत मोहब्बत करे। अब जब वो दुनिया में आता है और वो अल्लाह को नहीं पहचानता, तो वो जाहिर की चीजों में खो जाता है, वो जाहिर की चीजों से वैसी फिर मोहब्बत करने लगता है जैसी अल्लाह से होनी चाहिए। उसमें जज्बा तो है ना कि मैंने किसी से मोहब्बत करनी है, कभी वो इंसान होते हैं, कभी वो चीजें होती हैं, कभी वो कोई अपनी औलाद होती है, कभी और कोई रिश्ते होते हैं, कभी कोई कोई ना कोई चीज वो ऐसी तलाश करता है, जैसे समझ लें भूखा है, किसी को बहुत तेज भूख लगी हो, उसको अगर आप हेल्दी अच्छा खाना नहीं देते और नहीं उसको मिलता, तो वो क्या खाता है, वो गिरी पड़ी गली सड़ी कुछ भी चीज खा लेगा ना, क्योंकि उसके अंदर भूख है। इसी तरह इंसान में भूख है कि मैं किसी से मोहब्बत करूं, किसी को चाहूं, किसी के आगे झुकूं, किसी के आगे सजदे करूं, किसी से अपनी उम्मीदें रखूं, कोई हो मेरी जिंदगी में ऐसे जिसको मैं अपना सहारा बनाऊं। जब उसको कोई नहीं और मिलता तो वो बस कभी किसी को, कभी किसी बुद्ध के आगे झुकता है, कभी किसी पीर फकीर के पैर पकड़ लेता है, कभी किसी को सज्दे करता है, कभी किसी को करता है। इसने किसी को तो बनाना है ना, क्योंकि वो अल्लाह तक नहीं पहुंचा। इसी वजह से आप देखें ये जो क्रेविंग अंदर है ना, ये जो भूख अंदर है, ये इसी का नतीजा कि इंसान किसी भी मुश्किल में, बीमारी में क्या करता है, मुंह से क्या निकलता है, अल्लाह अल्लाह। और यहाँ कोई गैर मुस्लिम भी है तो मुसीबत आए थे तो क्या करता, ओ गॉड ओ गॉड। ये होता है कि यानी मोहब्बत का जज्बा है ही ऐसा जो अल्लाह ताला ने अंदर रख दिया है कि आप किसी को इतना चाहते हैं और उसको इतना तलब करते हैं और बस उसी की यादों में फिर रहते हैं। अगर आपको ये मोहब्बत का नहीं ना समझ आया तो फिर जाहिर है फिर आगे सारी बात ही समझ नहीं आई, क्योंकि आगे क्या आया, अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। जो ईमान वाले होते हैं ना वो तो इतने शदीद होते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। यानी उनकी जिंदगी में जो टॉप पे होता है, यानी जो उनका महबूब होता है वो अल्लाह है, ठीक है, जो उनका महबूब है वो अल्लाह है। और जब कोई किसी का महबूब बन जाता है तो फिर क्या होता है बताएं, हर वक्त फिर वो इंसान उस महबूब की तलाश में रहता है, कोई उसका जिक्र छेड़ दे तो बस वक्त का फिर पता ही नहीं लगता, ऐसा ही होता है ना। अगर मैं इनमें से कोई बात गलत करूं तो आप मुझे बताइएगा। जब कोई किसी का महबूब हो जाता है तो फिर उसके लिए भूखे रहना कितना आसान हो जाता है, उसकी खातिर भूखा हूं, फिर उसके लिए रातों को जागना कि मैं महबूब से बातें करूं वो कितना आसान होता है ना। पूरी रात भी गुजर जाए तो लगता है कि बातें ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि महबूब के साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। उसकी सोचों में क्या रहता है, उसकी मुलाकात, वो जीता मरता है अपने महबूब के लिए, वो फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उसके लिए। वो ख्यालों ख्यालों में भी रहता है ना तो महबूब से बातें कर रहा होता है, कभी हंसता है बातें कर करके, कभी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, उसके दिमाग पे जो छाया होता है वो कौन होता है, महबूब, जो किसी काम में भी हो और उसके बारे में कोई गलत बात कर दे तो इसका सीना छलनी हो जाता है और उसको अच्छा लगता है महबूब के लिए कोई काम करना, महबूब की तरफ से आने वाली हर चीज उसको अच्छी लगती है। फिर वो जिधर बैठता है महबूब का जिक्र छेड़ लेता, महबूब की नाराजगी वो फिर सह नहीं सकता, इसलिए बचता है फिर उन बातों से कि महबूब ना नाराज हो जाए। वो नहीं ये बर्दाश्त कर सकता कि उसके महबूब का चेहरा उससे फिर जाए। उसके लिए ये जहन्नुम के अजाब से भी बड़ी बात है कि महबूब जो है वो उससे नाराज हो जाए। वो रोता है तो उसकी जुदाई में, वो हंसता है तो उसके ख्यालों में, वो जीता है तो अपने महबूब के लिए, मरता है तो उसके लिए। उसकी मोहब्बत में दिखावा नहीं होता, खुलूस होता है, वो तन्हाई को पसंद करता है कि तन्हा हो अपने महबूब के साथ। तो दुनिया के काम धंधों में ऐसा नहीं खो जाता कि महबूब की याद ही ना रहे, कोई काम भी कर रहा होता है तो ध्यान उस तरफ होता है। और उसके कानों के लिए सबसे खूबसूरत नगमा क्या होता है, महबूब की बातें, उसका कलाम, कोई मौसीकी उसको सरूर नहीं देती। और उसकी जिंदगी में इंतजार किस चीज का होता है, उस दिन का जिस दिन महबूब से मुलाकात होगी, क्योंकि जिसके लिए सारी जिंदगी तड़पता रहा, जिसका नाम सारी जिंदगी उसने जुबान पे रखा, तो जाहिर है उसकी जिंदगी की तो आरजू क्या होती है, उसकी तो ड्रीम क्या होती है, महबूब से मुलाकात, कब होगी मुलाकात, कब उसको देखूंगा।